हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वीरेश ने जैसे ही ये बात कही, उसकी नजर बीच में बैठी हुई वसुंधरा पर आकर ठहर गई और इसके साथ ही वीरेश के मन में एक बहुत ही अलग सा एहसास जागा, क्योंकि वसुंधरा भी उसकी तरफ ही बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। बाकी सारे लोगों के वहां पर होने की वजह से वो दोनों आपस में कुछ भी बात नहीं कर पाए, लेकिन वीरेश ने उसकी तरफ देखकर हल्के से पलके झपकाकर इशारा किया, जैसे कि वो उसे इस बात का पूरा भरोसा दिलाना चाहता है कि उसके रहते उसे कुछ भी नहीं होगा। वसुंधरा को भी कहीं ना कहीं उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो भी काफी गौर से उसकी तरफ ही देख रही है। लेकिन तभी उसकी नजर वीरेश के दाएं हाथ पर पड़ी, जिस पर उसे खून बहता हुआ सा नजर आया और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पर कोई गहरा सा जख्म लगा हो। और वो वसुंधरा को नजर आया तो उसकी आंखों में वीरेश के लिए फिक्र नजर आने लगी, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ भी बोल पाती से पहले ही वो बाहर चला गया। और जब वो मुड़कर बाहर गया तो वसुंधरा ने देखा वैसे ही जख्म उसकी गर्दन से होते हुए शायद उसकी पीठ पर भी थे, जो कि उसे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी दोनों बाजुओं पर ठीक उसी तरह के जख्म थे और कुल मिलाकर 3 या 4 उस तरह के जख्म से खून रिस रहा था। वो जख्म वसुंधरा को नजर आए, लेकिन तब भी पर वीरेश इस तरह से उन लोगों से बात करके गया जैसे कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी और ना ही कोई तकलीफ हो रही है। लेकिन उसे महल के अंदर रहने के बावजूद भी ये जख्म कैसे लगे, ये बात वसुंधरा को समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसका तुरंत वीरेश के पास जाकर इस बारे में पूछने का मन कर रहा था, लेकिन वीरेश ने ही उस कमरे से बाहर जाने को मना किया था। वसुंधरा के अलावा कोई भी उसके जख्मों को देख नहीं पाया और सिर्फ वसुंधरा की ही उस पर नजर पड़ी, और वो अभी भी दरवाजे की तरफ ही देख रही है जहां से वीरेश बाहर निकाल कर गया। तभी चंद्रिका ने एकदम से तेज आवाज में चिल्लाया, ये क्या है? नहीं रानी माँ, देखिए ये क्या हुआ है इस पत्थर को? ये इस तरह से क्यों चमक रहा है? चंद्रिका के थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाने की वजह से वसुंधरा का ध्यान भी उसकी तरफ, और उसने देखा कि चंद्रिका के गले में पड़ा हुआ हरा पत्थर तेज रोशनी के साथ चमक रहा था, जो कि उसके गले में एक काले धागे में पड़ा हुआ था। और बचपन से लेकर आज तक उसके गले में वो पत्थर है जो कि आज तक के वो कभी भी नहीं चमका, या शायद चमक होगा तो उसने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। सभी वसुंधरा ने अपने गले में पड़े हुए पत्थर पर अपना हाथ रखा और फिर वो चंद्रिका के पत्थर की तरफ ही देखने लगी, और वसुंधरा ने सवालिया नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन उनमें से किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ राजा अपनी सेना के साथ महल के बाहर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरे युद्ध वाले अस्त्र शस्त्र कवच भी पहने हुए हैं, और राजा के साथ ही सेनापति, मंत्री और सिपाहियों की एक टुकड़ी भी खड़ी है। उसके अलावा बाकी सारे सिपाहियों ने महल को अच्छी तरह से घेर लिया है, और बाकी के सिपाही महल के दरवाजे में लगी उसे आग को बुझाने में लगे थे, जो कि लगभग आधी से ज्यादा बुझ गई है। लेकिन महल का वो दरवाजा काफी बुरी तरह से जल गया है और वो दोबारा से खड़ा नहीं हो सकता। फिलहाल राजा और उन सभी को चिंता दरवाजे की नहीं, लेकिन महल की सुरक्षा की है। और तभी राजा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, जो और जाकर पता करो जो लोग हमला कर रहे हैं वो आखिर कौन हैं, और उन्हें तुरंत ही बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। महाराज, कोई होगा अस्तित्व में तब ना आप उसे सजा दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी दुश्मन नजर नहीं आ रहा है जहाँ तक मेरी नजर जा रही है। हमें तो पर ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग हमला कैसे और कहाँ से छुपकर कर रहे हैं। सेनापति की ये सुनकर राजा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और वो थोड़ी सोच में पड़ गया। इसके अलावा सेनाओं की एक टुकड़ी उस तरफ गई जहां से उनके महल पर हमला हुआ था, और अभी भी लगातार महल की तरफ हमले होते उन्हें नजर आ रहे थे, जिसमें कि आग के गोले और तीरों की बौछार है, और उन तीरों की वजह से राजा के बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके हैं और बहुत सारे मर भी चुके हैं। इसके अलावा काफी सारे तीर उस महल की दीवारों पर आकर लग रहे थे, और राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उन महल की इतनी मजबूत पत्थर की दीवारों पर वो तीर आकर लगा कैसे रहे हैं, और आग के गोले से वो सभी बच रहे हैं, लेकिन महल के बगीचे में मौजूद सारे पेड़ पौधे उस आग की वजह से एकदम जलकर काले हो गए हैं, और आसपास का सारा लकड़ी का सामान भी धूं धूं कर जल रहा है, उन सब में आग लगी हुई है। राजा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कहां से हमला हो रहा है? इतनी देर से तुम लोग ये भी पता नहीं लगा पाए? दुश्मन हमारे महल से कितनी दूर है ये बताओ। राजा ने गुस्से में चिल्लाते हुए ये बात कही तो उनका एक सिपाही उनके सामने झुककर बोला, महाराज, हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए, आसपास कोई भी सेना नजर नहीं आ रही है। यहां तक कि हमारे राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य का कोई एक सिपाही भी नहीं है। मंत्री ने भी इस बात का जवाब देते हुए कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज कि ये सारे हमले आखिर कहां से हो रहे हैं। वो लोग हमसे कितनी दूर पर हैं? हमने तो नदी के पार भी देखा और महल के दूसरी तरफ पीछे भी पहाड़ों पर जितनी जगह भी हम जा पाए हैं, इस 2 घंटे में हमने सारी जगह पर तलाश कर लिया है, लेकिन कोई भी राजा और कोई भी सेना हमें यहां पर नजर नहीं आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस गुप्तचर ने तो यही सूचना दी थी कि दुश्मन राज्य का राजा हम पर हमला करने के लिए सेना एकत्रित कर रहा है। तो फिर अगर ये उसका काम नहीं है तो फिर कौन कर सकता है ये? और ऐसे दुश्मन से हम कैसे बचेंगे जो कि नजर भी ना आ रहा हो? राजा के इन सवालों का जवाब इस वक्त किसी के पास भी नहीं था, इसलिए वो सब बस सिर झुकाकर खड़े रहे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। राजा भी बहुत परेशान था। और तभी राजकुमार समर वहां पर आया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें लगता है जरूर वो लोग पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं और हमें उस तरफ जाकर देखना चाहिए। जंगलों के भीतर भी वो लोग छिपे हो सकते हैं। समर भी इस वक्त घोड़े पर सवार था, क्योंकि वो भी सेना के साथ आगे की तरफ गया था और वो भी एक योद्धा की तरह ही तैयार था। लेकिन उसने आकर ये बात कही तो राजा उसकी बात पर थोड़ा सोचने लगा और तभी उनमें से एक सेनापति ने कहा, नहीं राजकुमार, पहाड़ और जंगल दोनों ही महल से बहुत ज्यादा दूर हैं। वहां पर रहकर महल पर हमला करना नामुमकिन है, वो भी इतनी रात को, ये तो संभव नहीं हो सकता। राजकुमार समर ने गुस्से से सेनापति की बात का जवाब दिया, अच्छा, तो फिर जब यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है तो फिर क्या लगता है आपको, हवा में उड़ते हुए ये तीर हमारे महल तक पहुंचे हैं क्या? राजा ने उन दोनों के बीच बोलकर बात संभालते हुए कहा, अगर राजकुमार को लगता है तो सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में और दूसरी पहाड़ों की तरफ भेजो, क्योंकि जब तक दुश्मन नजर नहीं आएगा हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? जो भी छुपकर वार कर रहा हमें उसे ढूंढकर बाहर निकालना है। कहानी जारी रहेगी।